ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 118। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह मन अपने अधीन है। जो दृश्य की ओर होता है तो संसार होता है, और जो अंतर्मुख होता है तो सब आत्मा ही होता है। यह संसार मिथ्या है, न सत कहिए न असत कहिए, यह संसार भ्रम से हुआ है। ये जीव भूत भविष्य और वर्तमान काल में विपरीत देखते हैं। जैसे अग्नि शीतल होती है, आकाश पाताल में, पाताल आकाश में, तारे पृथ्वी पर, पृथ्वी आकाश के ऊपर भी होती है। बादल बिना वर्षा होती है और आकाश में हल फिरते हैं, ऐसे कौतुक मैं देखता हूँ। हे रामचंद्र जी, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, मन ही से सब कुछ होता है। जैसे मनोराज्य में होता है वैसा ही आगे स्थित होता है और उसकी सिद्धि होती है। पर्वत पूर्व में भिक्षुक के समान भिक्षा मांगते फिरते हैं, ब्रह्मांड उड़ते फिरते हैं, बालू से तेल निकलता है, मृतक युद्ध करते हैं, मृग गाते हैं और वन नृत्य करते हैं। हे रामचंद्र जी, मनोराज्य से सब कुछ बनता है। चंद्रमा की किरणों से पर्वत भस्म होते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। ऐसे यह संसार भी मनोराज्य है और शीघ्र संवेग है। इस कारण जीव उसको सत मानता है और आगे जो बालू से तेल आदि का निकलना कहा है उसको सत नहीं जानता, क्योंकि उससे मृदु संवेग है। पर है दोनों तुल्य। हे रामचंद्र जी, जिनको सत और असत कहते हो, आत्मा में वे दोनों नहीं है। ये जो तुमको सत पदार्थ भासित होते हैं, तो अग्नि आदि शीतल भी सत है, और जो ये मिथ्या भासित होते हैं तो वे भी मिथ्या है। केवल तीव्र और मृदु संवेग है। जब तीव्र संवेग दूर होता है तब सब मिथ्या माने जाते हैं। जैसे स्वप्न से जागा हुआ स्वप्नों को मिथ्या और जागृत को सत्य कहता है, पर दोनों मनोराज्य है। हे रामचंद्र जी, जितने आकार देख पड़ते हैं उन सबको मिथ्या जानो। न तुम हो, न मैं हूं और न यह जगत है। परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों है, उसमें अहम तुम की भावना नहीं उठती। वह केवल शांत रूप, आकाश रूप और निराकार रूप है। उसमें कुछ भी द्वैत नहीं, केवल अपने रूप में स्थित है। जैसे बालक मृतिका के हाथी, घोड़े और मनुष्य बनाकर उनके नाम रखता है कि यह राजा है, यह हाथी है, यह घोड़ा है, सो वे सब मृतिका से भिन्न नहीं है। पर बालक के मन में उनके नाम भिन्न भिन्न दृढ़ होते हैं। वैसे ही मन रूपी बालक नाना प्रकार के संज्ञाओं की कल्पना करता है, पर आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। इससे हे रामचंद्र जी, तुम किसका भय करते हो? निर्भय रहो। तुम्हारा स्वरूप शुद्ध, निर्भय और अविद्या के कारण कार्य से रहित है, उसी में स्थित रहो। यह संसार तुम्हारे स्फुरण में हुआ है। आत्मा न सत्य है न असत्य, न जड़ है न चेतन। न प्रकाश है न तम, न शून्य है न अशून्य। शास्त्र ने जो विभाग कहे है कि यह जड़ है यह चेतन है, सो इस जीव के जगाने के निमित्त कहे हैं। आत्मा में कोई वास्तव संज्ञा नहीं है, केवल आत्म तत्व मात्र है। इसे दृश्य की कल्पना त्याग कर आत्मा में स्थित रहो। ब्रह्मा से स्थावर तक सब कल्पना मात्र है, इसमें क्या आस्था करना। संसार के दोनों भाव तुल्य हैं। स्फुरण जैसा भाव का है वैसा ही अभाव का है। स्वरूप में दोनों की तुल्यता है और व्यवहार में जैसा है वैसा ही है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, भूमि का प्रसंग यह चला था, उसमें जो सार आपने कहा वह मैं समझ गया, अब भूमिकाओं का विस्तार कहिए। योगी का शरीर जब छूटता है और स्वर्ग के भोगों को भोगकर वह नीचे गिरता है, तब फिर उसको क्या अवस्था होती है यह भी कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस योगी को भोग की वांछा होती है वह स्वर्ग में जाकर भोग भोगता है, पर यदि उसको और भी भोगने की इच्छा होती है तो वह मध्यमंडल मनुष्य लोक में पवित्र स्थान और धनवानों के ग्रह में जन्म लेता है, और जो उसको भोग की वांछा और नहीं होती तो ज्ञानवानों के ग्रह में जन्म लेता है। थोड़े काल के उपरांत उसका पिछला संस्कार उदय होता है, उसे स्मरण कर वह आत्मा की ओर उन्मुख होता जाता है। जैसे कोई पुरुष लिखता हुआ सो जाता है, पर जब जागता है तब उस लिखे को देखकर फिर आगे लिखता है, वैसे ही वह योगी पहले के अभ्यास को दिन दिन बढ़ाता जाता है। वह अज्ञानी का संग नहीं करता, क्योंकि अज्ञानी भोगों की ओर उन्मुख और आत्म मार्ग से बहिर्मुख है। वह जो चुगली करने वाले हैं उनका संग नहीं करता, उसके सब अवगुण नष्ट हो जाते हैं और दंभ गर्व राग द्वेष भोग के तृष्णादि स्वाभाविक रूप से छूट जाते हैं। वह शांति को प्राप्त होता है, उसे कोमलता दया आदि शुभ गुण स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, इस निश्चय को पाकर वह वर्णाश्रम के धर्म यथाशास्त्र करता हुआ संसार समुद्र के पार के निकट प्राप्त होता है, पर पार नहीं होता यह भेद है। यह तीसरी भूमिका है, इसके बाद फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे चंद्रमा की किरणें भी ताप को नहीं प्राप्त होती, वैसे ही तीसरी भूमिका वाला संसार रूपी गड्ढे में नहीं गिरता। हे रामचंद्र जी, यह सप्त भूमिका ब्रह्म रूप है, पर इतना ही भेद है कि तीन भूमिका जागृत रूप है, चतुर्थ स्वप्न है, पंचम सुषुप्ति है, छठी तुरीय है और सप्तम तुरियातीत है। हे रामचंद्र जी, प्रथम तीन भूमिकाओं में संसार की सत्यता जान पड़ती है, इसे उन्हें जागृत कहा है, और पिछली चार में संसार का अभाव है, इससे वे जागृत से विलक्षण है। जागृत में घट पट आदि पदार्थ सत लगते हैं कि घट घट ही है और पट पट ही है। अन्यथा नहीं। ये अपना ही अपना कार्य करते हैं, इसे अपने काल में ज्यों के त्यों है। इसी प्रकार सब पदार्थ है। तीसरी भूमिका वाला स्थावर जंगम को जानता है, उन्हें नाम और रूप से ग्रहण करता है, पर हृदय में राग द्वेष नहीं रखता, क्योंकि विचार करके उसने इन्हें तुच्छ जाना है। पर संसार का अत्यंत अभाव नहीं जाना और ब्रह्म स्वरूप को भी नहीं जानता, क्योंकि उसको स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब स्वरूप को जानेगा तब संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा। इन तीनों भूमिकाओं से संसार तुच्छ लगता है पर नष्ट नहीं होता। इनको पाकर जब शरीर छूटता है तब और जन्म में उसको ज्ञान प्राप्त होता है और वह दिन दिन ज्ञान परायण होता है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तब ज्ञान उपजता है। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है और फिर डाल फूल फल निकलते हैं, वैसे ही प्रथम भूमिका ज्ञान का बीज है, दूसरी अंकुर है, तीसरी डाल है और चतुर्थ से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वही फल है। प्रथम तीन भूमिकाओं वाला धर्मात्मा और पुरुषों में श्रेष्ठ होता है। उसका लक्षण यह है कि वह निरअहंकार असंग और धीर होता है। उसकी बुद्धि से विषयों की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और वह आत्मपद की इच्छा रखता है। यह पुरुष श्रेष्ठ कहता है, यथार्थ आचरण यथाशास्त्र करता है, शास्त्र मार्ग को कभी नहीं छोड़ता, दो शास्त्र मार्ग में मर्यादा के साथ अपने प्रकृत आचरण से विचरता है, वह श्रेष्ठ पुरुष है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पीछे आप कह आए हैं कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तब एक मुहूर्त में उसको युग व्यतीत होता है और जन्म से मरण पर्यंत जैसे किसी की भावना होती है वैसा ही आगे भासित होता है, सो एक मुहूर्त में युग कैसे भासित होता है सो कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत जो तीनों कालों सहित भासित होता है वह ब्रह्म स्वरूप ही है, भिन्न कुछ नहीं, समान ही है। जैसे इख में मिठास है वैसे ही ब्रह्म में जगत है। जैसे तिलों में तेल और मिर्चों में तीक्ष्णता है वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे तिलों में तेल होता है वैसे ही ब्रह्म में जगत है। कहीं सत कहीं असत, कहीं जड़ कहीं चेतन, कहीं शुभ कहीं अशुभ, कहीं नरक कहीं मृतक कहीं जीवित, ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत भाव अभाव होता है। वह सत असत से विलक्षण है, आत्मसत्ता से सब सत्य है और भिन्न देखिए तो असत्य है। हे रामचंद्र जी, जिनको सत्य या असत्य जानते हो, यथा पृथ्वी आदि पदार्थ सत्य और आकाश के फूल आदि असत्य है, वे दोनों तुल्य है। जो विद्यमान पदार्थ सत्य मानिए तो आकाश के फूल भी सत्य मानिए। जैसे स्वप्न में कई पदार्थ सत और असत भासित होते हैं वैसे ही जागृत में भासित होते हैं। फुरना दोनों का समान है। जैसे सत्य पदार्थों का स्फुरण हुआ है वैसे ही असत का भी हुआ है। स्फुरण से रहित सत असत दोनों का अभाव हो जाता है। इसलिए यह विश्व भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे जल में पवन से भंवर उठते हैं, वैसे ही आत्मा में स्फुरित होने से यह संसार भासित होता है। इसकी भावना त्याग कर स्वरूप में स्थित हो रहो। तुमने जो प्रश्न किया कि एक मुहूर्त में युग कैसे भासित होता है, उसका उत्तर सुनो। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न देख पड़ता है तो एक क्षण में बड़ा काल बीता जाता है। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न देख पड़ता है तो एक क्षण में बड़ा काल बीता जान पड़ता है, तथा और का और भासित होता है। स्व आश्चर्य तो कुछ हुआ नहीं, मोह से सब कुछ उत्पन्न होता है और भ्रम से देख पड़ता है। हे रामचंद्र जी, जैसे पुरुष सोते में तो एक आप ही होता है, पर उसमें नाना प्रकार का जगत भ्रम से भासित होता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जीव कई भ्रम को देखता है। स्वरूप के जाने बिना भ्रम का अंत नहीं होता। इससे तुम और प्रश्न किस निमित्त करते हो? एक चित्त को स्थिर करके देखो तो न कोई संसार प्रतीत होगा, न कोई जन्म मरण होंगे, न कोई बंधन है, न मोक्ष, केवल आत्मा ही भासित होगा। जब संकल्प उठता है तब अविद्या से अपने को बंधा जानता है। संकल्प से रहित होने पर मुक्त और विद्या से मुक्त जानता है। पर आत्मस्वरूप ज्यों का त्यों है, उसे न बंधन है, न छुटकारा है, न विद्या है और न अविद्या, वह केवल शांत रूप है। इसे सर्वदा सब प्रकार सब ओर से ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जब स्वरूप की भावना होती है तब संसार की भावना जाती रहती है। यह सब शब्द कलना में है कि यह पदार्थ है, यह नहीं है, आत्मा में यह कोई नहीं। जैसे पवन चलने और ठहरने में एक ही है, वैसे ही विश्व चित्त का चमत्कार है। ब्रह्मा से चींटी तक ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है और आत्मा ही के आश्रय से शब्द फुरते हैं। पर आत्मा फुरने और न फुरने में सम है, क्योंकि उससे भिन्न दूसरा कोई नहीं है। हे राम जी, जो ब्रह्म सत्ता ही है तो आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है, मैं क्या हूं, यह जगत क्या है, यह प्रश्न उठते ही नहीं। एक मन को स्थिर करके देखो कि ब्रह्मा से चींटी तक जो कुछ भी पदार्थ है वे सब सद्भासित हो तो प्रश्न कीजिए। इसलिए जैसे भ्रम से दूसरा चंद्रमा दिखता है, वैसे ही जगत भी भ्रम से भासित होता है।
हरि ओ हरि ओ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।